ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय छः स्कंद छः अध्याय पांच श्लोक संख्या 36 ऐसे बोलते हैं। श्री दक्ष उवाच, अहो असाधु साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्वकार्यभिकारणं भिक्षो मार्गी प्रदर्शितः समागा। श्रीदक्ष उवाच, अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्वकार्यार्भाकाणां अभिक्षोर्मार्ग प्रदर्शितः प्रजापति दक्ष ने कहा, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो किंतु तुम वास्तव में संत हो नहीं। यद्यपि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूँ किंतु मैं संत पुरुष हूँ। तुमने मेरे पुत्रों को संन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, संन्यासेर अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। समाज में अनेक सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी मिलेंगे, किंतु यदि वे सब अपने कर्तव्यों के अनुसार उचित ढंग से रहे तो उन्हें साधु समझा सक जाता है। प्रजापति दक्ष निश्चय ही साधु थे क्योंकि उन्होंने ऐसी महान तपस्या की थी कि भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए थे, तो भी उनमें छुट्टी निकालने की मनोवृत्ति थी क्योंकि नारद ने उनके इरादों को ध्वस्त कर दिया था। दक्ष ने अपने पुत्रों को नारायण सरस के पास तपस्या करने के लिए इस अभिलाषा से भेजा था कि वे ज्ञान से युक्त पूर्णतया गृहस्थ बन सके, किंतु नारद मुनि ने तपस्या में उनकी अति उच्च स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें संन्यास आश्रम में वैष्णव बनने का उपदेश दिया। यही नारद मुनि तथा उनके अनुयायियों का कर्तव्य है। उन्हें चाहिए कि वे सबों को इस जगत का परित्याग करने और भगवत धाम लौटने का मार्ग दिखलावे। किंतु प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों के संबंध में नारद मुनि द्वारा किए गए कर्तव्यों की महानता को नहीं देख सके। नारद मुनि के आचरण को समझने में असमर्थ दक्ष ने नारद पर असाधु होने का दोषारोपण किया। इस संदर्भ में भिक्षो मार्ग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सन्यासी को त्रिदंडी भिक्षु कहा जाता है क्योंकि उसका कर्तव्य है कि वह गृहस्थों के घरों से भिक्षा मांगो और गृहस्थों को आध्यात्मिक उपदेश दे। सन्यासी को द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगने की अनुमति है किंतु गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता। गृहस्थ चार आश्रमों के अनुसार अपनी जीविका चला सकता है, ब्राह्मण गृहस्थ विद्वान बनकर तथा सामान्य लोगों को भगवान की पूजा करने की विधि बताकर जीविका अर्जित कर सकता है। वह स्वयं पूजा का कार्य कर सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि एकमात्र ब्राह्मण ही अर्च विग्रह पूजा में लंगे और लोक अर्च विग्रह पर जो भी प्रसाद भेंट करे उससे वे ब्राह्मण करे। यद्यपि कभी कभी ब्राह्मण दान ले सकते हैं किंतु वह भरण पोषण के लिए नहीं अपितु अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए होता है। इस तरह ब्राह्मण अपने भावी इस्तेमाल के लिए कुछ भी संग्रह नहीं कर सकता। इसी तरह क्षत्रियगण नागरिकों से कर वसूल सकते हैं और उन्हें नागरिकों की रक्षा भी करनी चाहिए, विधि विधानों को लागू करना चाहिए और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। वैश्यों को कृषि तथा गोरक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए तथा शूद्रों को तीनों उच्च वर्णों की सेवा करके अपनी जीविका चलानी चाहिए। ब्राह्मण बने बिना कोई संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। सन्यासी तथा ब्रह्मचारी द्वार द्वार जाकर भीख मांग सकते हैं किंतु गृहस्थ नहीं। प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि की निंदा की क्योंकि द्वार द्वार भिक्षा मांगने वाले ब्रह्मचारी नारद ने दक्ष के उन पुत्रों को सन्यासी बना दिया था जो गृहस्थ बनने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे थे। दक्ष नारद पर अत्यधिक क्रुद्ध थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि नारद ने उनके साथ महान अन्याय किया है। दक्ष के मतानुसार नारद मुनि ने दक्ष के अनुभवहीन पुत्रों को गुमराह किया था। असाधु कार्यार भाकानम दक्ष अपने पुत्रों को अबोध बालक मानता था जिन्हें नारद ने संन्यास आश्रम दिखला कर गुमराह बनाया। इन सब बातों के कारण प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि पर दोषारोपण किया कि वे असाधु थे और उन्हें साधु का वेश धारण नहीं करना चाहिए था। कभी कभी संत पुरुष गृहस्थों द्वारा गलत समझ लिया जाता है, विशेषतया तब जब वह गृहस्थों के युवा पुत्रों को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने का उपदेश देता है। सामान्यतया एक गृहस्थ सोचते कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए बिना व संन्यास आश्रम में ठीक से प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई युवा व्यक्ति नारद के या उनकी गुरु परंपरा के किसी सदस्य के उपदेशों के अनुसार संन्यास आश्रम का मार्ग अपनाता है तो उसके माता पिता अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं। यही घटना हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी देखी जाती है, क्योंकि हम पाश्चात्य देशों के सारे युवा बालकों को संन्यास मार्ग अपनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। हम गृहस्थ जीवन की अनुमति देते हैं, किंतु गृहस्थ भी त्याग के मार्ग का पालन करता है। यहाँ तक कि गृहस्थ को अनेक बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, जिससे उसके माता पिता सोचते हैं कि उसका जीवन एक तरह से विनष्ट हो गया है। हम मांसाहार, अवैध मैथुन, जुआ तथा नशा की अनुमति नहीं देते। फलस्वरूप माता पिता आश्चर्य करते हैं कि किस तरह जीवन सकारात्मक हो सकता है जबकि इतने निषेध लगे हुए हैं। विशेषतया पाश्चात्य देशों में ये चार निषिद्ध कार्य एक तरह से आधुनिक जनसमूह के प्राणाधार है। इसलिए माता पिता कभी कभी हमारे आंदोलन को नापसंद करते हैं, जिस तरह प्रजापति दक्ष को नारद के कार्य अच्छे नहीं लगे और उन्होंने नारद पर बेईमानी का दोषारोपण किया। भले ही माता पिता हम पर रुष्ट हो, किंतु हमें बिना हिचक के अपना कर्तव्य निभाना है, क्योंकि हम नारद मुनि की गुरु परंपरा में है। गृहस्थ जीवन में लिप्त रहने वाले लोग आश्चर्य करते हैं कि किस तरह कृष्ण भावनामृत में साधु बनने के लिए ही कोई गृहस्थ जीवन के भोग को त्याग सकता है, जो कि काम भोग के लिए छूट है। वे यह नहीं जानते कि गृहस्थ को मिली यौन जीवन की छूट तब तक नियमित नहीं की जा सकती जब तक वह साधु का जीवन न बिताए। अतः वैदिक सभ्यता का आदेश है कि 50 वर्ष की आयु होते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। यह अनिवार्य है, किंतु आधुनिक सभ्यता गुमराह हो चुकी है। अतः गृहस्थ लोग मृत्यु तक पारिवारिक जीवन में लगे रहना चाहते हैं, इसलिए वे कष्ट उठाते हैं। ऐसे मामलों में नारद मुनि के शिष्यगण तरुण पीढ़ी के सदस्यों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तुरंत शरीक होने की सलाह देते। इसमें कोई बुराई है नहीं है। Very divisive purport. Divisive. क्या क्या बोलते हैं? भेदकारी. भेदकारी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का, भेदकारी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए इनके लिए। हाँ, गृहस्थों और त्यागियों को शत्रु बनाते हैं ऐसे। हम साधु है जो भिखारी सन्यासी ब्रह्मचारी, नहीं नहीं तुम लोग साधु नहीं, हम तो साधु है। वास्तव में ये तात्पर्य में कि गृहस्थ और सन्यासी विरोधी होंगे ऐसा नहीं है, भक्तों और अभक्तों, क्योंकि गृहस्थ भी सन्यासी होने चाहिए। किस प्रकार? अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी च नानिराग्नेर न चाक्रियः। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि सन्यासी कौन है, जो सब कुछ परित्याग करते हैं, नहीं जो निर्दिष्ट शास्त्र से निर्दिष्ट कार्यों करते हैं अनासक्त होने से, वो व्यक्ति सन्यासी और योगी है। तो फिर भी चार आश्रम है, अनुष्ठानिक रूप से, औपचारिक रूप से गृह प्रवेश होते, गृहस्थ बनना है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति अनुमोदित है और तीन आश्रम त्याग के लिए है, सही है ऐसे? ऐसा नहीं, चारों आश्रमों में इंद्रिय तर्पण वर्जित है, गृहस्थ भी सन्यासी होने चाहिए, क्योंकि वैष्णव गृहस्थ तो सब कुछ करते, जो वैष्णव है तो कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, सर्वोपाधि वे निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। तो निरुपाधि रूप से, तो निरुपाधि का मतलब क्या है, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाहं वाणी न च नरपतिः नापि वैश्यो न शूद्रो इत्यादि। तो मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, गृहस्थ वानप्रस्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैं नहीं हूँ, किंतु प्रोध्यान परमानंद क्या है, किंतु प्रोध्यान परमानंद अभी तो याद नहीं, गोपी पार्थो पद कमल दासु दास अनुदास, मैं भगवान कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास। तो मानव समाज में कोई है गृहस्थ, कोई है सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी ऐसा, लेकिन जो वैष्णव है तो इस प्रकार आत्मा परिचय करते हैं, मैं कृष्ण का दास का दास का दास का दास का दास हूँ, का दास का दास का दास अनुदास हम कहते हैं संक्षेप में, नहीं तो दास अनुदास 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 अपर्याप्त हो सकते। तो वैष्णव गृहस्थों उनके इंद्रियों भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर वैष्णव गृहस्थ के आदर्श प्रतीक है, मानस देहो गेहो जो किच्छु मोर आपि लुंथु अपदे नंद किशो, सब कुछ जो मेरा है ठाकुर भक्तिविनोद कहते हैं, मेरा मन मेरा शरीर मेरा गृह मेरे कुटुंबों मेरी संपत्ति सब कुछ मेरा नहीं है, आपके हैं नंद किशोर कृष्ण। तो इस भावना से गृहस्थ भक्त तो जीवन व्यतीत करते हैं और इस प्रकार वे भी साधु है और शुद्ध भक्त होते हैं। तो दक्ष भी साधु साधु थे। किस प्रकार वो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो शास्त्र के नियमों के अनुसार अपना वर्ण धर्म अच्छी तरह पालन करते हैं, चाहे भी सन्यासी वानप्रस्थ गृहस्थ ब्रह्मचारी, तो साधु बोल, साधु का मतलब जो सदाचार करते, भ्रष्टाचार नहीं करते, या शास्त्र विधि मुद्रित वर्तते काम कारतः न सस्यतिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्र विधि विधियों को पालन नहीं करते वो व्यक्ति की परम गति प्राप्ति, सुख शांति प्राप्ति उसलिए संभव नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कार्य कारम यह अर्हसि। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें मालूम ज्ञात होना चाहिए कि शास्त्र विधि क्या है और कैसे पालन करना चाहिए, और वो ज्ञान के अनुसार हमें शास्त्र विधियों को पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार दक्ष साधु थे। श्री दक्ष, श्री दक्ष, श्री दक्ष उवाच, तो श्री शब्द दक्ष का नाम के पहले है। तो महापुरुष थे, कठोर कठोर दीर्घ तपस्या किया है और भगवान विष्णु स्वयं दक्ष के सम्मुख होने तो दक्ष को उनका दर्शन प्रदान किया है। तो दक्ष तो साधु थे परंतु भक्त नहीं थे, तो कैसे संभव है कि वो भगवान स्वयं उनके सामने उपस्थित थे, प्रकट अपना रूप दक्ष को प्रकट किया है। यदि दक्ष तो भक्त नहीं थे तो पुण्यशाली थे, महान पुण्यशाली थे दक्ष। और पुण्यवान होने का कारण से प्रजापति पदवी मिल गए है, प्रजापति का पद मिल गया। वो सब प्रजापति जो एक भ्रमण में है तो भगवान के प्रतिनिधि है। प्रजा प्रजा का संख्या बढ़ाने के लिए तो इसलिए भगवान विष्णु दक्ष को अनुग्रह करके अपना रूप दिखाया। परंतु दक्ष के हृदय में बहुत गहरा इच्छा थी प्रजापति होना, यौन जीवन से प्रजा की सृष्टि करना। तो ध्रुव महाराज भी कठोर तपस्या की भौतिक वर प्राप्त करने के लिए, नारायण से वर मांगते थे और भगवान नारायण ध्रुव महाराज को अपना रूप दिखाया और वो रूप देखने से ध्रुव महाराज का अनुभव था कि सब कुछ जो मैं चाहता था जिसे तपस्या किया था, तो तो वो सब कुछ तो कुछ नहीं, बहुत बड़ा बार चाहता ध्रुव महाराज कि मैं ऐसा राजा चाहता हूँ जो ब्रह्मा जी से महान है। और भगवान विष्णु ध्रुव महाराज को वो वर दिया, परंतु भगवान विष्णु का रूप दर्शन प्राप्त करके ध्रुव महाराज के हृदय में वो सब भौतिक इच्छाएं जो थी तो पूरा मार्जित हो गया है, और ध्रुव महाराज के हृदय में केवल एक इच्छा रहती, भगवान नारायण की सेवा करना। तो दक्ष महाराज का वैसे नहीं हुआ, क्यों? तो एक बात है कि ध्रुव महाराज विशेषकर नारद मुनि का आशीर्वाद प्राप्त किया है, और दक्ष महाराज में उनके हृदय में बहुत सख्त इच्छाएं थी भौतिक जगत के भोग करना। तो इसलिए भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करके भी उनका हृदय इतना ज़्यादा कठोर रहता कि इतना ज़्यादा साहस था, नारद मुनि जो परम साधु है उनको असाधु कहना और श्राप देना। तो कौन है साधु, कौन असाधु है? सब लोग अपने बारे में विचार करते हैं कि मैं साधु हूँ, सब कुछ जो मैं करता हूँ वो अच्छा है। तो ऐसे मतभेद होते कौन सा मार्ग, कौन सा पथ साधु है, और विशेषकर कलयुग में, कलह युग में कलह बहुत होते, धर्म का क्षेत्र में भी बहुत झगड़ा होते, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र में क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, नास्तिक जो धर्म नहीं है, सभी धर्म के विरुद्ध है। तो ये सब अलग अलग दल के सदस्यों तो आपस में झगड़ा कर, नहीं हमारे ओ हमारे जीसस सबसे उत्तर, नहीं हमारे अल्लाह, हमारे कौन साईं बाबा सबसे बड़ा है। तो ऐसे झगड़ा होते हैं कलयुग का कारण से। तो सब नहीं, कलयुग में वो क्या है, ऐसा नहीं है कि अन्य युगों में झगड़ा मतभेद ऐसे नहीं होते, होते हैं परंतु कलयुग में ज्यादा होते हैं। सत्ययुग में भी हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच मतभेद था, हिरण्यकशिपु अपने बारे में सोचे कि मैं ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी, हिरण्यकशिपु का मत। और प्रहलाद का मत क्या क्या था, ईश्वर परमा कृष्णा भोगी है कृष्णा, ईश्वर हम सिद्ध है कृष्णा, बलवान है कृष्णा, सुखी है कृष्णा, और मैं भी सुखी हूँ क्योंकि नैवोद्विजय पर दुरात्य वैतरण्यस्तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तम, क्योंकि मेरा चित्त निमग्न है आपका गुणगान करने में, भगवान नरसिम्हदेव को बताया प्रहलाद। तो मतभेद होगा और इसलिए कुछ लोग जिसे वो झगड़ा नहीं हो, जिसे सब लोग शांति में, समाज में शांति में सब रहेंगे। तो एक और मत निष्कर्ष किया, जतो मत ततो पद, एक और मत कि सब मत तो अच्छे हैं, तो जो भी आप पालन करते हो तो करो। लेकिन यही प्रस्ताव तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो एक उदाहरण है कि हिंदू लोग का मत है गौ हत्या महापाप है, और मुसलमान का मत है गौ हत्या परम पुण्य है। तो कैसे जतो मत ततो पद चलेगा? हम अपना पद पालन करेंगे, और तुम जैसे पालन करते चाहते तो ऐसे करो। तो हिंदू घर के पास या सामने अगर गौ हत्या हो तो हिंदू लोग तो उसको बहुत बुरा लगते, तो जतो मत ततो पद नहीं चलेगा। और एक और मत है तो इसलिए सत्य क्या है, सत्य क्या अनुसंधान करने चाहिए। नारद मुनि जानते हैं कि सत्य मार्ग है वो मार्ग जिससे हम परम पुरस्कार, परम लाभ मिल सकते हैं। वो सब ऐसे कहते हैं, लेकिन वो परम लाभ क्या है उसके बारे में मतभेद है। दक्ष महाराज का मत था कि धार्मिक गृहस्थ जीवन पालन करना वो साधु का मार्ग है, उससे परम लाभ होते। लाभ क्या होते कि यही जीवन में हम सुख शांति में रहेंगे और अगले जन्म में हम वैसे स्थिति मिलेगी दोबारा। और नारद मुनि जानते हैं कि भौतिक संसार दुखमय है और साधारण भौतिक धर्म पालन करने से उस सुख जो मिलते हैं वो वास्तविक सुख नहीं है, वो दुख का कारण। वैसे ही विचार करना कि यही भौतिक जगत में हम सुखी रहेंगे, वैसे सोचने से दुख की उत्पत्ति होती है, और वास्तविक लाभ, वास्तविक कल्याण का मार्ग है सब कुछ जो जगत में है वो सब भोगना की इच्छा परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरा समर्पित होना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान कृष्ण कहते हैं। प्रवृत्तिः सर्वभूतानां निवृत्तिस्तु महाफलम्। मनु महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि तो प्राय सभी लोग प्रवृत्ति मार्ग पर है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना। तो इस प्रकार धर्म पालन करने से अर्थ मिलते, भौतिक लाभ मिलते, और उससे कामनाएं की पूर्ति होती है। तो धर्म अर्थ काम ये सब जीवन, ये सब प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। और कुछ लोग तो मोक्ष को भी विशेषता देते हैं। तो ऐसे धर्म अर्थ काम मोक्ष इच्छा पुरुषार्थ है, और ये चारों के लिए जीवन व्यतीत करना प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। साधारण भौतिक धर्म पालन करने से अर्थ प्राप्त करना, काम कामनाओं की पूर्ति करना, और जो सन्यासी है तो मोक्ष प्राप्त के लिए सन्यास धर्म पालन करते हैं। तो मनु महाराज इनकी मनुस्मृति में बहुत वैदिक नियम देते हैं जो प्रवृत्ति मार्ग पर है, परंतु कहते हैं उसमें कि निवृत्ति स्थु महाफलम, निवृत्ति मार्ग उससे महाफल मिलते हैं। निवृत्ति मार्ग क्या है? वो अभिलाष चरना कि मैं सुखी रहूंगा भौतिक संसार में, और इसलिए संसारिक सुख से उदासीन होना त्याग का मार्ग, संन्यास का मार्ग। तो जो सख्त गृहस्थ है तो साधु लोग को असाधु मानते, जो सन्यासी है उनको निंदा करते। ओ श्री शंकराचार्य बाल्यवयस में संन्यास ग्रहण किया है, और नर्मदा के तट पर स्थित महिष्मती गए हैं, जिसमें मंदन मिश्रा एक मीमांसक, पूर्व मीमांसक, कर्म मीमांसक के बड़े पंडित रहते, तो वहाँ गया और पहले मंदन मिश्रा शंकराचार्य को देखना नहीं चाहता, क्योंकि मंदन मिश्र का विचार में सन्यासी का दर्शन परम अमंगल होते, क्योंकि वो सन्यासी जो है जो धर्म के विरुद्ध है, धर्म है गृहस्थ जीवन में, वो सन्यास लेना तो परम अमंगल। कैसे अमंगल है? कि वो सब कुछ जो हम पुण्य कर्म जो हम करते हैं गृहस्थ जीवन में वो सब नहीं करते, वो सब त्याग किया, जो मंगल है त्याग किया, इसलिए वो उसका दर्शन भी अमंगल होता है। तो ये गृहासक्त गृहमेधी जन का विचार है, गृहमेधी एक शब्द है गृहस्थ, जो गृह में स्थित है धर्म पालन करने के लिए, विशेषकर वैष्णव धर्म। और गृह में ही जो है, जो गृह में रहते हैं तो पूरा आसक्त होते हैं और नहीं जानते कि वास्तविक जीवन है भगवान का संसार में। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, कृष्ण संसार करो चारयानाचा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धर्म सा। तो संसारिक जीवन में या संन्यास जीवन में हमें सदैव भगवान कृष्ण का संसार स्मरण करना चाहिए, कि कृष्ण भगवान ब्रज धाम में रहते हैं, उनके माता पिता सब है, और द्वारके धाम में रहते हैं, उनके माता पिता अलग माता पिता है, माता पिता और कुटुम्ब सब है। वो कल एक माता जी वो मेरे पास आए, बोलते वो किसके बारे में, ही इज माई ओनली सन, वो मेरा एकमात्र पुत्र है। तो वो माता जी को मैं बताया कि और आप उसके एकमात्र माता है, लेकिन भगवान कृष्ण के दो माता पिता है। एक है माता पिता वृंदावन में और एक है द्वारका में। तो कृष्ण संसार करो, चारे अनाचा और जो नहीं करना चाहिए निंदा कर्म, जो अनुचित है वो सब छोड़ना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन है हमारे माता पिता। कृष्ण पिता हम अस्य जगत माता धात पिता महा, और कृष्ण धर्म के सार है। गृहस्थ जीवन में धर्म पालन करना चाहिए। आजकल कौन करते, सबका धर्म है एक प्रकार का धर्म जो किसी शास्त्र में उसका वर्णन नहीं है। वो ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, वैश्य धर्म है, शूद्र धर्म, स्त्री धर्म है, और आज सब एक ही वर्ण है, सब टीवी धर्म पालन करते हैं गृह में। सबका धर्म क्या है, तो टीवी के सामने बैठना और क्या करते हैं घर में, वो तो मुख्य वो मुख्य है, गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु है। टीवी देखना सब एक साथ, परिवार का मतलब कि हम सब एक साथ टीवी को देखते। तो धर्म पालन कौन करते, बहुत कम ऐसे आज तक कुछ लोग हैं। तो परम धर्म क्या है, कृष्ण भक्ति। तो गृहस्थ जीवन में केंद्र बिंदु कृष्ण भक्ति होने चाहिए, और यदि किसी के पुत्र तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पूरी तरह जीवन समर्पण करने चाहते हैं, तो माता पिता वो पुत्र को पूरा आशीर्वाद देना चाहिए, बाधा नहीं देना चाहिए। और नारद मुनि के आधुनिक प्रतिनिधि उनको श्राप नहीं देना चाहिए। आज वो श्राप नहीं देते, आजकल कोर्ट केस करते। और बहुत बुरा लगता है कि मेरे हमारे जीवन की एक ही आशा, हमारे एकमात्र पुत्र जिसकी एजुकेशन के लिए हम बहुत लाख रुपया दिया है, और उसे बिजनेस कैलकुलेशन था कि वो बाद में वो बहुत पैसा कमेंगे और हम मिलेंगे, लेकिन अभी वो कृष्ण भक्त बन गए और हमारे पास आके हमसे भी पैसा मांगते भगवान की सेवा के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में एक मंतव्य किया कि निमाई पंडित जो सच्ची माता प्राण धन थे, तो अचानक घर परित्याग करके संन्यास ग्रहण किया है, तो सच्ची माता बहुत दुखी होती हुई भी निमाई को आशीर्वाद दिया। और श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य में मंतव्य करते हैं कि जो माँ उसके पुत्र जो कृष्ण का अनुसंधान करने के लिए गृह त्याग करते, तो वो पुत्र जो वो माँ जो वो ही पुत्र को आशीर्वाद नहीं देते, तो वो माँ माया है। तो वास्तविक माता कौन है? जो पूरी तरह पुत्र का कल्याण चाहते। तो यदि जानते हैं कि परम कल्याण पूरा कल्याण होते कृष्णा की सेवा में, शरणागत होने भगवान कृष्णा की सेवा में, तो वो माता तो वो पुत्र को आशीर्वाद देंगे, नहीं तो वो माया है। माता तो माया, और बंगाली में मैं माया ऐसे बोलते, महिला माया। तो मायक माता नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भारत में हम देखते हैं कि बहुत माता पिता आपत्ति करते हैं यदि उनके पुत्र, और आजकल सबके एकमात्र पुत्र है ना, हम दो हमारे एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो, एक लड़का एक लड़की, वो आज के भारतीय हिंदू का आदर्श है, मुसलमानों की बात अलग है। तो एक पुत्र है, और अगर वो पुत्र तो गृह त्याग करते कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो गृह तो शून्य जैसे होते, तो हम क्या करेंगे? तो अच्छा हो तो अभी आपके लिए भी घर में रहने का कोई आवश्यकता है, तो आप भी गृह त्याग करो। अच्छा है नहीं, वो लड़की को शादी में देना, और उसके बाद माता पिता तो पूरी तरह समर्पित होना कृष्ण की सेवा में, और सबके लिए होना चाहिए। कितने बार श्रील प्रभुपाद इनके तात्पर्य में लिखते, पंच षोडवं वनं व्रजेत, 50 वर्षों के आयु के ऊपर या वही आयु पहुँच के तो गृह त्याग करना चाहिए। तो पूरा जीवन तो केवल मेहनत करने के लिए व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो निवृत्त होना चाहिए, किस लिए? निवृत्त जीवन तो आलसी जीवन नहीं होना चाहिए, तो और ज्यादा व्यस्त होना चाहिए कृष्ण की सेवा में। और इसलिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति मिल सकती है। तो या जब तक हम आधा भक्ति करते हैं और आधा अभक्ति, भुक्ति, भुक्ति अर्थात इंद्रिय तर्पण करना, तो हम कृष्ण को नहीं मिलेंगे। तो श्रील प्रभुपाद वैसे अमेरिका जाकर प्रभुपाद एक कागज, एक पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया, इंडियाज मैसेज ऑफ गुडविल, भारत का कल्याणकारी की वाणी है। परंतु वास्तव में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बहुत शत्रु बने अमेरिका में, विशेषकर इनके शिष्यों के माता पिता जन, सो सब तो वैसे नहीं थे। बहुत श्रील प्रभुपाद के बहुत शिष्यों के माता पिता तो श्रील प्रभुपाद को अभिनंदन दिया कि पहले मेरा लड़का या मेरी लड़की तो भ्रष्ट पथ पर था, अभी अच्छा मार्ग पर है वैसे। और भारत में भी हम देखते हैं कि बहुत बार हम देखते हैं कि माता पिता जो पहले आपत्ति करते तो बाद में तो ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा ऐसे ग्रहण करते कि मेरा लड़का तो भक्ति करते, और कुछ दिन के बाद वे भी माला करते और ऐसे भक्त बन जाते। बहुत बार हम ऐसे देखते, तो बहुत प्रयास करके यदि लड़का तो वापस नहीं आते तो निरुपाय होने से वे भी भक्ति करते। शायद ऐसी आशा है कि यदि मैं भक्ति करूँगा तो वृद्धावस्था में मेरे एकमात्र लड़का मुझे पालन करेंगे। और वो एक बड़ा द्विधा है नहीं कि आजकल सबके एकमात्र एक ही पुत्र होते हैं, और बुढ़ापा में वो वृद्ध माता पिता के पालन कौन करेंगे? धर्म संकट होते हैं ना, तो क्या करना चाहिए? तो वृद्ध और भक्तों के वृद्ध माता पिता के लिए वृद्ध आश्रम बनाना चाहिए वृंदावन में। श्रील प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं नहीं, श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंध का एक तात्पर्य में कि वो सब केवल भक्तों के माता पिता के लिए नहीं है, तो पृथ्वी के सब वृद्ध लोग का आह्वान है। तो यहाँ वृंदावन आ जाए और वृद्ध काल व्यतीत करो वृंदावन में, और इस प्रकार निवृत्त जीवन में तैयार हो जाओ वृंदावन से वृंदावन जाना, भूम वृंदावन से गोलोक वृंदावन जाने के लिए। तो नारद मुनि का समय से इस प्रकार जग्र चलते आज तक चलते। और भक्त समाज में भी सब एक ही मत के नहीं है, कुछ भक्त बोलते हैं कि जैसे तैसे हो तो लड़कों को निकालना है माया से, और कुछ भक्त बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तो समाज में शांति रखना चाहिए, और जिससे कोई हमको बुरा नहीं लगेगा ऐसे हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन इस जगत में तो संभव नहीं है कृष्ण भक्ति प्रचार करना जिससे कोई असंतुष्ट नहीं होंगे, वो तो संभव नहीं। किसी प्रकार का कार्य करने से संभव नहीं है, लोग जो भी करते हैं और कुछ बहुत अच्छा काम करके भी कुछ लोग आपत्ति करेंगे, वैसे है संसार वैसे है। तो हमें पूरा अस्वस्थ होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति तो एक ही कल्याण का मार्ग है सब जीव के लिए, और इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए जिससे जितने भी संभव हो बहुत से लोग तो पूरी तरह कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी की आपत्ति है किसी का?
अभी बात आएंगे। ये असाधु जो बड़ा आसन पर बैठ रहा है, ये असाधु का वचन, उस पर कोई आपत्ति है? असाधु मन ये यत आत्मनो यम असन्नपि क्लेशद आसदेहः। असाधु क्या है? ऋषभदेव क्या बोलते? असाधु है ऐसा कार्य करना जिससे पुनर्जन्म होते। नूनं प्रमतः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीति आप्रिणोति। असाधु मन्ये यत आत्मनोयम् असन्नपि क्लेशद आसदेह। असाधु है जनबूझ करके पाप कर्म करना जिससे पुनर्जन्म होते हैं और बार बार दुख प्राप्ति होती है, वो असाधु है। ओ अभी वो अन्नप्राशन है, वो संतान क्या लड़का या लड़की? अगर लड़का हो तो उसको सन्यासी बनाना तुरंत। लड़की अगली बार। तो अनु अन्नप्राशन के उपलक्ष कुछ कीर्तन होने चाहिए और शिशु को भगवान को प्रणाम करवाना, और आज प्रसाद की व्यवस्था की, उनका क्या नाम है, वेंकट राव, वेंकट नारायण राव, फुली तेलुगु नेम, वेंकट नारायण राव। ये पहले कीर्तन करना है कुछ मिनट।